मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमोता ही जाते अर्हंतादि जो विद्यादि सागर सुदी जो विद्यादि सागर सुदी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितो प्रदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने पूजून के सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सभी लोगों ने पिछले दिन जीवन जीने के साथ साथ जीवन की पूर्णता के बारे में भी विचार किया है। जीवन की पूर्णता मरण के समय समता भाव से देह का परित्याग करने में है। ठीक ऐसे ही जैसे नदी अपने उद्गम से बहती है, सारे रास्ते पार करके अंत में समुद्र में मिल जाती है, वो नदी की पूर्णता है। और यदि वही नदी किसी मरुस्थल में खो जाती है तो वो उसमें उसकी सार्थकता नहीं होती। हमारे अपने जीवन की पूर्णता या सार्थकता भी पंचेंद्रियों के विषय में लीन रहकर अपने प्राण त्याग देने में नहीं है। हमारे जीवन की सार्थकता तो पंच परमेश्वरी में अपने आप को विलीन कर देना, समता भाव धारण करके देह का विसर्जन करने में है। हमने कितनी बार यह देह धारण की और कितनी बार हमने ये छोड़ी है, कितने प्रकार से हमने इस देह को धारण किया है, देव पर्याय में चाहे नार की जीव के रूप में या एक इंद्री से लेकर के असंगी पंचेंद्री त्रियंचों में या मनुष्य पर्याय में भी हमने नाना रूपों में इस देह को धारण करके छोड़ा है। और देह को जब जब भी हमने छोड़ा है तो अज्ञानता पूर्वक ही छोड़ा है। हमें आत्मा और देह के बीच का जो भेद विज्ञान है वो नहीं हो पाया और देह छूटती रही, हम पुनः पुनः उसे धारण करते रहे। ऐसे मरण को बाल बाल मरण कहते, जिसमें जीव अज्ञानता पूर्वक अपना जीवन जीता है उसे आत्मा के स्वरूप का ज्ञान ही नहीं होता और वो मरण को प्राप्त हो जाता है। ऐसा मरण सब जीव कर रहे हैं अनादिकाल से, ये बाल बाल मरण है जिसमें जीव को अपने आत्मा और शरीर के बीच दोनों के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, भेद विज्ञान हो जाता है। वो यदि अपने जीवन में व्रत नियम और संयम धारण किए बिना अपने देह को छोड़ देता है तो उसको बाल मरण कहते। हाँ, भेद विज्ञान हो जाने के बाद भी अगर अनुव्रत या महाव्रत धारण नहीं किए तो फिर कहते कि भाई ऐसा मरण भी बाल मरण है। अगर कोई दृष्टि की निर्मलता से संपन्न हो जावे, वेद विज्ञान हो जावे और साथ में अणुव्रतों को धारण करे और जीवन के अंत में और संलेखना पूर्वक मरण को प्राप्त हो तो कहते ये बाल पंडित मरण है। तो अभी छोटा अनुवृत्ति है इसलिए बालक के समान है, लेकिन कहते काम बड़ी बुद्धिमान का किया है इसलिए कहते बाल पंडित है। और अगर कोई सच्चे देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा, सात तत्वों की श्रद्धा आपा करके वेद विज्ञान के साथ यानी सम्यक दर्शन ज्ञान के साथ में महाव्रतों को अंगीकार करके जीवन के अंत में अपनी इस देह को छोड़े तो कहते ये पंडित मरण है। और सबसे श्रेष्ठ मरण तो इन सब में भी श्रेष्ठ मरण है तो केवली भगवान का अपने देह को छोड़ करके सिद्धत्व को प्राप्त करने की जो अवस्था है वो पंडित पंडित मरण है, जिसके बाद फिर हमें देह धारण नहीं करना पड़ती। इतने प्रकार के मरण में से हमने ये तो निश्चित है कि अभी तक पंडित पंडित मरण तो किया नहीं है। कभी कदाचित पंडित मरण किया हो तो अब हमारा संसार अल्प ही है, बाल पंडित मरण भी किया हो तो भी संसार अल्प है, बाल मरण भी हुआ हो सम्यक दर्शन के साथ तो भी संसार अल्प है। लेकिन भेद विज्ञान के बिना अपने देहाशक्त होकर के देह को ही आत्मा मान करके और अगर हम मरण करेंगे तो ऐसा मरण हमें कभी संसार से छुटकारा दिला नहीं पाएगा। इसलिए अपने को जब मरना ही है, जब जन्म लिया है तो मरण निश्चित है, तो क्यों ना हम मरण की ऐसी विद्या सीख लेवें जिससे कि बार बार जो है जन्म और मरण के चक्कर में हम ना आ सकें। उसके लिए आचार्य भगवंत यही प्रेरणा देते हैं कि आत्मज्ञान पूर्वक अनुव्रत या महाव्रतों को धारण करके जो अपने जीवन के अंत में समता पूर्वक देह को छोड़ता है उसके ही जीवन की सार्थकता है। विनोबा ने लिखा कि जीवन आपने कैसा जिया, जी हम आपका जीवन देख के तय नहीं कर सकते, जी तो हमें उस समय तय होगा जब आपके मरण का समय आएगा। आपको मरते देख करके हम समझ जाएंगे कि जीवन कैसा जिया। अगर आप अत्यंत शांत परिणाम से मर रहे हो तो हम जान लेंगे कि जीवन ठीक ढंग से जिया है और हड़बड़ी में और अत्यंत घबराहट में और अत्यंत देह शक्ति पूर्वक अपनी देह को छोड़ते हो तो भैया तुमने कितव रहीसी में जीवन जियो हुए लेकिन तुम्हारा जीवन निरर्थक था। जैसे किसी व्यक्ति की वास्तविकता जाननी हो तो कहते कि उसके चौके में जान सकते तुम वास्तविकता। हाँ जे उनको बड़ा तर्क बहुत था, ज्ञान बहुत इस तरह का था, दोनों चीजें उन्हीं के द्वारा कही गई हैं कि हम जीवन के बारे में आपका तब मालूम करेंगे जब आप मर रहे होंगे तो पता करेंगे कि कैसे जीवन जिया होगा, और आप जो जीवन जी रहे हो सो आपकी माली हालत क्या है ये हमें मालूम पड़ेगा आपके चौके से कि आप क्या खाते हो, आपके भोजन से मालूम करेंगे कि आपका जीवन कैसा है और आपके मरण से मालूम करेंगे कि आपने जीवन जिया कैसे है। हमारे अपने जैसे इम्तहान से मालूम पड़ता है कि कितनी पढ़ाई करी है, ऐसे ही हमारे जीवन के अंत में हमारे देह छोड़ने में हमारी जितनी सावधानी है उसमें हमारे जीवन की सार्थकता है। ये बात हमें एक निश्चित कर लेनी चाहिए। बचाना किसको भैया ये बताओ, इस देह को बचाना या कि देह में रहने वाले देही को बचाना। इस देह को हम बचा ही नहीं सकते, ये देह तो नाशवान है, उसके भीतर जो बैठी हुई चेतना है, देही है, वह अविनश्वर है। उसमें हम अगर रत्नत्रय को धारण कर लेते हैं और उससे बचाते हैं, तब हमारे जीवन की सार्थकता है। एक व्यक्ति के घर में आग लग गई, अब घर के सब लोग सामान बचाने में लगे हैं, वो घर का मालक बाहर खड़ा हुआ है, अपनी हवेली जलती देख रहा है, आवाज लगा लगा करके लोगों को बुला रहा कि भैया बचा लो, हमारे सब जरो जात सामान। आज की बात अलग है कि वही में और धर दो पूरो, जोन जोन चीजों को बीमा है भी सब धर दो वही में, सो जड़ तो जान दो, अपन को तो नहीं मिल जाए, पैसा मिल जाए जी। वैसा नहीं कह रहे हम, बेईमानी का काम। तो वो आकल विकल होकर यहां से वहां भागता है, लोगों से कहता कि बचा लो, और लोग भी जो है जुटे हुए हैं, सामान बचाने में जुटे हुए हैं, भीतर से बाहर फेंका जा रहा है सामान जो जो, और अचानक उसको याद आता कि ये भैया वो जो भीतर के भीतर तीसरे चौथे कमरे में, अब बहुत कमरा बने थे, बड़े आदमी तो ज्यादा कमरा, सोना उतने में है, कछुआ सोना है कि सबरे कमरे में सोने, कमरा है बड़े आदमी के, कमरा तो ज्यादा ही रहेंगे। तो अब उसमें भीतर तो वो पलने में और दो साल का बालक झूल रहा है, उसे तो देखो। तो जाकर के सामान बचाने वालों का हाथ रुक गया, और भीतर जाकर के देखा तो तब तक तो उसका प्राणांत हो चुका था, जाकर के बाहर लाके रख दिया। अब सेठ विरक्त हो गया, जिसके लिए सारा सामान बचाया जा रहा था वही चला गया, अब क्या रखा है, व्यर्थ है। ऐसा भाव अपने मन में आता कि नहीं? तो वो नहीं आता, जब तो बचाओगे जिंदगी भर सामान। अगर ये भाव आ जाता कि भैया जो भीतर बैठा है उसकी खबर ली कि नहीं ली, उसको बचाया कि नहीं बचाया, जो ये सब बचाते रहे का सब जिंदगी भर बचाते रहते, इसको नहीं बचाते जो भीतर बैठा, वो निरंतर मलिन हो रहा, निरंतर मरण की तरफ जा रहा, निरंतर उसका पतन होना ही मरण है। आत्मा के पतन के जितने उपाय हैं मानो वे उसके मरण के ही उपाय हैं, मरती नहीं आत्मा, पतन की तरफ चली जाती है। और हम बचाते हैं बाकी सामान को, नहीं भाई, बचाने योग्य तो हमारे अपने गुण हैं, हमारा अपना धर्म है। इसलिए जब जब भी हमारे ऊपर कोई इस तरह की विपत्ति या संकट आवे कि अब तो दे जाने को है, सो हम तैयारी करके बैठे, बल्कि तैयारी पहले से कर ले। मैं जैसे कि यात्रा पर, छोटी सी यात्रा पर भी कोई व्यक्ति जाता है तो अपना होल्डाल लगा के जाता है, अटैची लगा के जाता है, चार चीजें रख लेता है कि भाई दो तीन दिन में लौट के आएंगे, सब व्यवस्था से चलो। पहले सबसे बड़ी व्यवस्था होती थी लोटा और दूर की और कछु भन्ना, फिर चले जाओ क्या जहां, लोटा दूर और भन्ना, अपना शुद्ध भोजन करेंगे और यात्रा करेंगे, जितने दिन लग जाएंगे। इतनी यात्रा, छोटी सी यात्रा की इतनी तैयारी करते हैं और महायात्रा पर निकले, बताइए उसकी तो तैयारी होना ही चाहिए, वो तैयारी जीवन भर करनी पड़ेगी। दो चार दिन के लिए अपना घर छोड़ के जाने के लिए तो घंटे दो घंटे में तैयारी हो सकती, लेकिन इस देह को छोड़ करके अन्यत्र दूसरी देह धारण करने के लिए जाने वाली उस महायात्रा के लिए तो पूरे जीवन भर तैयारी करने पड़ेगी, तब ठीक स्थान मिलेगा। स्थान भी हमें को तय करना पड़ेगा हमारे परिणामों से कि कहां जाकर के उत्पन्न होंगे। हमारे खोटे परिणामों से हम एक इंद्री में भी जाके उत्पन्न हो सकते हैं, वृक्ष में भी जाके उत्पन्न हो सकते हैं, चीटी में भी उत्पन्न हो सकते हैं, और हम चाहें तो देव पर्याय को भी प्राप्त कर सकते हैं, और पुनः जो है मनुष्य देह को धारण करके विदेश क्षेत्र में भी उत्पन्न हो सकते हैं। इस पंचम काल में 123 जीव पूरे 21,000 वर्ष में विदेश क्षेत्र में जाकर के और वहां से केवल ज्ञान को प्राप्त करेंगे। भद्र मिथ्या दृष्टि जिन्हें सम्यक दर्शन भी नहीं हुआ, यहीं से जाएंगे। सज्जन है लेकिन है अभी मिथ्यात्व उनके भीतर, लेकिन सज्जनता बहुत है। उस सज्जनता और के फलस्वरूप वहां जाकर के मनुष्य की देह धारण करके वहां से कल्याण को प्राप्त होंगे। 123 ही जीव है, अब उनमें 123 में अपना नाम हो तो बात अलग है, नहीं तो अपने लिए और दूसरा मार्ग है, हम उसे अपनाएं। मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए कि मुझे तो अपनी चेतना का कल्याण करना है, इस देह की सेवा नहीं, मुझे तो अपने चेतना की सेवा करनी है। ऐसा विचार अगर जीवन भर बना रहेगा, ऐसी तैयारी हमारी होगी, तो अवश्य ही जो है इस हम देह से मुक्त हो सकेंगे। उसी के लिए ये संलेखना है। तैयारी कैसे करना, तो फिर आचार्य भगवंत कहते कि तैयारी करने के तीन ढंग है। हाँ, जिसमें से दो तो महापुरुषों के लिए है, अपन के लिए बचा है सिर्फ एक ही प्रकार। हाँ, वर्तमान में भी आचार्य शांति सागर जी महाराज ने उन तीन प्रकार में से दूसरे प्रकार को अंगीकार किया था, जिसे कि वज्रषभ नाराज सहनन को धारण करने वाले कोई महामुनि ही उस प्रकार से मरण की प्रक्रिया कर सकते हैं, बाकी और किसी के बस की नहीं है। वो भक्त प्रत्याख्यान, इंगनी मरण और प्रायोपगमन, ये तीन ढंग हैं संलेखना लेने के, अपनी देह को विसर्जित करने के लिए भी तीन प्रकार कहे गए हैं। भक्त प्रत्याख्यान, जिसमें कि क्रम क्रम से अन्न और पान इत्यादि का त्याग करते हुए दूसरे के द्वारा भी अपने शरीर की सेवा टहल और स्वयं भी अपने शरीर की सेवा टहल करवाते हुए देह को त्याग देना, ये भक्त प्रत्याख्यान सबसे आसान है। फिर कहते कि क्रम क्रम से भोजन पान इत्यादि का त्याग करते हुए बिना दूसरे की से सेवा कराए हुए स्वयं अगर चाहें तो अपनी सिर दर्द होने पर दवा ले, में दूसरे से नहीं दबवाएंगे। यह जो मरण की पद्धति है वो इंगनी मरण कहलाती है, और प्रायोपगमन में तो न स्वयं अपनी देह की सेवा टहल करेंगे, न दूसरे से कोई सेवा शुश्रूषा कराएंगे, और एक बार जो अन्न पान का त्याग किया सो फिर दूसरी बार उसकी तरफ देखेंगे भी नहीं। जैसे जहां जिस स्थिति में पड़े हैं, देह छूटने तक उस स्थिति से हिलेंगे भी नहीं। प्रायोपगमन, ये देह के त्याग करने की कास्ट वक्त जैसे कि लकड़ी पड़ी हुई है, ठीक ऐसे ही देह पड़ी रहती है, और उसमें आत्मा अपने ध्यान में लीन हो करके और धीरे से देखो त्याग करके अपने गंतव्य की तरफ निकल जाती है। ये प्रायोपगमन, ये तो वज्रषभ नाराज सहनन को धारण करने वाले महान आत्माओं के ही संभव है, महाव्रतियों के। इंगनी मरण की साधना जरूर आचार्य शांति सागर जी महाराज ने की थी, 36 दिन तक जो है, और धीरे धीरे अन्न पान का त्याग करके आखिरी दिन भी उन्होंने सब जीवों के लिए, लाखों लोग उस समय उनके दर्शनार्थ आए थे, लाखों लोग, क्योंकि संलेखना लेने वाले साधक को जीवित तीर्थ कहा गया है। यह जो हम तीर्थ वंदना करते हैं, यात्रा करते हैं, वह तो जड़ तीर्थ है, जीवित तीर्थ है जिसने रत्नत्रय की साधना करके सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र को अंगीकार करके जीवन के अंत में अत्यंत समतापूर्वक अपनी देह को छोड़ने का संकल्प ले लिया है, संलेखना ग्रहण कर ली, उसे जीवित तीर्थ कहा है। मुनि महाराज भी अगर तीर्थ यात्रा को जा रहे हों और मालूम पड़े कि कोई संलेखना ले रहा, तो कहती तीर्थ यात्रा छोड़कर वहां कहां जा रहे हो, ये है जीवित तीर्थ, इसके दर्शन करने मात्र से सारे तीर्थों की वंदना हो गई। इतना महत्वपूर्ण है किसी महाव्रती के द्वारा और संलेखना ग्रहण करके समता पूर्वक अपनी देह को विसर्जित करना, और वो भी दूसरे से सेवा टहल बिना कराए हुए। करवट लेना है तो अपनी शक्ति है तो ले लेंगे, नहीं है शक्ति तो ज्यों के त्यों पड़े रहेंगे। ये साधना की थी आचार्य शांति सागर जी महाराज ने इस पंचम काल में, जहां की देह अत्यंत अशक्त है, कोई विशेष सहन नहीं है, इसके बावजूद भी मन की और आत्मा की सामर्थ्य आत्मबल को जागृत करके उन्होंने, और अंतिम दिन भी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए उपदेश दिया था, और उपदेश में मुख्य बात क्या थी, भीरु न का संयम धरा, ये भाई डरो मत संयम धारक। आएगा आचार्य शांति सागर जी महाराज का समाधि दिवस अगले महीने में, अपन देखेंगे उनकी अपनी साधना। उन्होंने संलेखना की साधना की, वो अग्नि मरण प्रकार की थी कि दूसरे से सेवा नहीं कराई। आज वर्तमान में कोई संलेखना ग्रहण करे तो उसे भक्त प्रत्याख्यान नाम का संलेखना का जो विधान है उसके अनुरूप तैयारी करनी चाहिए। स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम चापहाय चमना, पूरा याद नहीं है, शुद्ध मना स्वजनम परिजनम अपिचा शांत्वा शमिये प्रियर वचनई आलोच सर्वमेना कृतकारित मनुमतम च निर्व्याजम आरोपेन महामृत मामरण स्थायी निशेष। आचार्य सुमंत भद्र स्वामी के चरणों में बैठे, वे कहते कि हम बताते तुम्हें कि किस प्रकार से अपनी देह को छोड़ना, अपनी देह में कैसे रह करके जीवन व्यतीत करना, ये तो सिखा दिया कि पाप ने करना और अपना जीवन जीना। लेकिन जब देह छूटने लगे तब स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम च आपमाए शुद्ध मना, अत्यंत शुद्ध मन से स्नेह को छोड़कर वस्तुओं के प्रति जो प्रीति का संस्कार है उसे स्नेह कहते, और वस्तुओं के प्रति जो द्वेष का संस्कार है उसे बैर कहते। ये अलग परिभाषाएं हैं भाई। और जो अपने स्त्री पुत्र माता पिता आदि के प्रति जो प्रेम का भाव है, मूर्छा का भाव है, उसे संग कहते हैं। और जो बाह्य और अंतरंग में हमारे अंदर आसक्ति है उसे कहते परिग्रह। देखो चार अलग अलग चीज है, स्नेहम वैरम संगम परिग्रहम च आप, इन सबको छोड़ करके शुद्ध मना अत्यंत विशुद्ध मन से, फिर स्वजनम परिजनम अपीचे छांत्वा क्षमेत प्रियर वचने, अत्यंत प्रेम पूर्वक अत्यंत प्रिय वचनों के साथ में अपने स्वजन और मिलने जुलने वाले परिजन, इन सबसे क्षमा याचना करके और उनसे क्षमा करा करके, आप भी हमें क्षमा करो हम भी आपको क्षमा करते हैं। आप पहले क्षमा करो ऐसा नहीं, हम पहले आपको क्षमा करते हैं, आप भी हमें क्षमा कर देना। आपने करो तो आपकी जिम्मेदारी, हमने तो करा और अपना मन शुद्ध कर लिया। ऐसे शुद्ध मन के साथ में ये पहली तैयारी है, देह का विसर्जन करने से पहले इस देह के संबंध से जितने लोगों से हमारा राग द्वेष रहा है वो सब छोड़ना, पहले देह बाद में छोड़ेंगे। पहले तो देह के माध्यम से ही तो सारे राग द्वेष होते हैं, सारे संबंध, चाहे राग का संबंध हो, चाहे द्वेष का संबंध हो, चाहे व्यक्ति से संबंध हो, चाहे वस्तु से संबंध हो, सारे संबंध जो है आशक्ति और अनाशक्ति के सब संबंध इसी देह आश्रित हैं। तो कहते ये सब पहले छोड़ दो, सबसे क्षमा मांग करके, सबको क्षमा करके शुद्ध मन से फिर आगे की तैयारी। कहते आलोचेन सर्वमेना कृतकारित मनुमतम च निर्व्याजम, बिना किसी छल कपट के अपने समस्त जीवन में लगे हुए दोषों का मन वचन काय से आलोचना करना, गुरु साक्षी पूर्वक अपने दोषों के निवेदन करने को आलोचना कहते। अपन तो करें दूसरे की आलोचना, और इसमें लिखा हुआ है कि अपनी आलोचना करो, किसके सामने, अकेले में नहीं, गुरु के सामने, कि हमने जो भी करो, हमने जा भी गलती करी, अब हम सब बता के जाते मरने से पहले, अब क्या है, क्या शेष रहा, क्यों लेकर के जाएं वो पाप की गठरी, हम बता के जाते कि हमने ये अपराध किए, हमसे ये गलतियां हुई, सो इन सब की आप मुझे क्षमा करें, अब आगे से मैं कृतकारित अनुमोदना और मन वचन काय इन सब से, इन सब दोषों को मैं छोड़ता हूं। ये तैयारी सबसे पहले आवश्यक। शोकम भय मौषादम क्लेशम कालुष्यमरति मपि हित्वा सत्वोत्साह मुदीरे च मना प्रसाद्यम श्रुतई रमृतई। इतनी तैयारी कराएंगे, अकेले हैं सुनी कि अकेली चीजें छोड़ने की शुरुआत कर दी नहीं। अब पहले तो मन की तैयारी बहुत है, शोकम भय मौसादम इन सब से, इन सब को मन में आने वाले शोक के भाव को छोड़ देना कि अरे अब का पता हमाओं का हुई है, अबे तो सब ठीक है, आगे पता नहीं क्या होगा। मरण का भय, वेदना का भय, आकस्मिक भय, ही लोक भय, परलोक भय, अत्राण भय, अगुप्ति भय, कितने प्रकार के तो भय हैं, सात प्रकार के भय। इन सबको छोड़कर मन में कोई विषाद नहीं है देह को छोड़ने का, ना कोई शोक है, ऐसा सब भाव छोड़कर सत्वोत्साह मुदीर्य चा अपने आत्मबल को जागृत करके अत्यंत उत्साहपूर्वक संलेखनाम जोशिता अर्थात अपनी स्व की इच्छा से लेना, किसी से प्रेशराइज होकर के नहीं कि चार लोग कह रहे हैं ये चार लोगों में बड़बारी होगी, ऐसे किसी भाव से नहीं, मेरे अपने स्वयं के आत्मबल को जागृत करके अत्यंत उत्साह पूर्वक इस देह के विसर्जन की तैयारी कर रहे हैं। इतनी सब तैयारी हो जाने पर फिर कहते हैं कि अब धीरे धीरे करके आहार छोड़ना, क्योंकि संलेखना में दो चीजें बहुत जरूरी हैं, सत लेखन लेखनम इति को अर्था तनुकरणम, धीरे धीरे कमजोर बनाते जाना। किस किस को कमजोर बनाना? दो चीजों को, कषाय को और काय को, शरीर को, दो ही चीज है, दोनों को क्रश करते जाना, कषाय भी मंद होती जावे और शरीर के प्रति आसक्ति भी घटती चली जावे। देह के लिए आचार्य श्री कहते कि जब देह ने हमारा काम करना छोड़ दिया, जब इस तन ने हमारा साथ देना छोड़ दिया, तो हमने भी इसको वेतन देना छोड़ दी। तन हमारा काम करेगा, धर्म ध्यान में सहयोगी बनेगा, तो चलो वेतन दिलाते, भोजन इत्यादि दिलाएंगे, जिससे तो हमारा काम करो। और हमारे धर्म ध्यान में सहयोग न करोगे, सोने सोने की कहोगे कि अब तुम सो रहे, अब हमसे नहीं हो, तो ठीक है, फिर अब तुम्हें कटौती हो जाएगी, तुम्हारी वेतन में कटौती करेंगे। ऐसा ही जो है, फिर धीरे धीरे शरीर को पुष्ट बनाने वाली वस्तुओं को छोड़ते चले जाते हैं और कषायों को पुष्ट बनाने वाली चीजों को भी जो है और कम करते चले जाते। एक तरफ कषाय मंद होती चली जाए, दूसरी तरफ देहा शक्ति घटती चली जाए, तब फिर वो संलेखना और सार्थक हो जाती है। इसमें दिया हुआ है कि आहारम परिहाप्य क्रमशः स्निग्धम विवर्धयेत पानम। अक्षोपशम जो है बढ़ना चाहिए था, तो थोड़ा बार बार अभ्यास नहीं होने से बात की गाथा है, नहीं तो एक समय था सनस्सी में, हमें जब भी पढ़ाता हूं रतनकरण शालुकाचार्य तो याद आ जाता कि सनस्सी में छुटलक अवस्था में जो पूरा याद करवाया था हमारे बड़े महाराज समय सागर जी महाराज, रोज सुनते थे और हम सुनाते थे, फिर आगे का पढ़ाते थे वो, तो पूरी 150 श्लोक कंठस्थ उस समय। अब बहुत समय हो गया, बार बार उनका अभ्यास करो तो याद रहता, नहीं तो विस्मृत हो जाता, विद्या का तो ऐसा ही है। तो कहते कि फिर क्रम क्रम से आहारम परिहाप्य स्निग्धम च, पहले जो है आहार को कम करो, अर्थात जो मोटे खाद्य पदार्थ हैं जिनसे कि शरीर में मल अधिक मात्रा में बनता है उनको पहले छोड़ो, फिर बाद में स्निग्ध जो रस हैं घी दूध दही इनका फिर उसके बाद में त्याग करो। फिर कहते स्निग्धम च हापयित्वा खरपानम पूरयेत क्रमशः, फिर अपने इस शरीर को चलाने के लिए कुछ तो देना है, तो कहती खरपान, खरपान अर्थात नीरस आहार, ऐसा करके क्रम क्रम से जो है शरीर बिल्कुल जो है प्यूरिफाई होता चला जाता है, जैसे जैसे हमारे आहार की प्रक्रिया ठीक होती चली जाती है, वैसे वैसे शरीर में रोग भी निष्कासित होते चले जाते। अभी कुछ ही दिन पहले की बात है, पंडित दरबारी लाल जी कोठिया न्यायाचारी अशक्त हो गए थे। मैं उनको देख करके आया बीना में, 1900 कब की बात है देखो स्मरण में, 1999 की बात होना चाहिए, 99 या 2000 की, हाँ 99 की। तो बीना में उनको देख करके आए, देख करके लगा कि अब तो जो है ज्यादा दिन नहीं टिकेंगे। उनको कहा कि आचार्य श्री के पास में ले करके जाए, सो हमारे पास दर्शन करा के उसमें खिमलासा में, और आचार्य श्री नयावर में थे सो वहां पर लेकर के गए। सोचिएगा कि जिस दिन लेके गए थे उस दिन उनकी आंख नहीं खुलती थी और नमस्तु करने के लिए मुख से आवाज नहीं निकलती थी, हाथ नहीं उठता था, मुड़ता नहीं था। ऐसे स्ट्रेचर पर ले गए थे, आचार्य श्री के चरणों में रखा और आचार्य श्री के आशीर्वाद का ऐसा फल कि फिर उनके अंदर और आचार्य श्री के दर्शन कर करके चेतना जागृत हुई, और चेतना तो ऐसी जागृत हुई सब प्रकार के आहार छोड़ करके जो आचार्य श्री ने, और अकेला और रस काहे का सब्जियों का रस और वो देना शुरू किया। 8 दिन के अंदर बिना किसी की मदद के चलने लगे। आप सोच सकते हैं, कोई नहीं सोच सकता था वहां पर, सब सोच रहे थे कि इनकी कसर लेकिन हुई जे का करते हैं, लेकिन आत्मबल जागृत हो गया, देह तो अपनी जगह थी। रोज अब करना क्या है, पहले जाने, लेकिन जब मौका आवे तब उसका उपयोग कर ले तो मजा आ गया उसका, और क्या। उस जानने का हमारा लाभ तो होगा कि हाँ देखो हमने यही तो पढ़ा था, अब ऐसा मौका आ गया, कौन बचा सकता है, मैं शांत भाव से और अपनी देह को छोड़ूं। ये अपने को सीखना चाहिए। ये शरीर मंदिर है, इसमें बैठी हुई आत्मा तो देवता के समान है, किसको बचाओगे वज्रपात होने पर, बोलो क्या कहोगे कि हम तो पहले मंदिर बचे हैं, मूर्ति चली जाए तो चली जाए, दूसरी ले आए जयपुर से आदर देखे। ये भैया ऐसा नहीं है, मूर्ति बच जाएगी तो मंदिर की शोभा तो मूर्ति से है, इस देह की शोभा तो इसमें बैठे हुए आत्मा से है, उसको हम बचाएंगे तो ही जो है इसकी सार्थकता है। संलेखना लेने वाले बहुत सारे लोगों के हमारे सामने उदाहरण है, एक आध उदाहरण आपको आज सुनाते हैं, बाकी बजाएं लेट कल के लाने, और क्या, नहीं तो फिर का अभी पूरा बहुत सारा समय हो जाएगा है। थोड़ा थोड़ा परसना चाहिए छोटे बच्चों को, उसमें ऐसा कहती खा जाओ तुम फिर परसत जाओ, और नहीं तो एक हफ्ते परसे आकर भर लो फिर मैं खाओ तुम सब खराब हो गए। तो एक उदाहरण अपन देखें कि कैसे हमारे आचार्य महाराज की कृपा से हमको बहुत सारी सरलेखनाएं देखने का अवसर मिला। उसमें उन एक साथ जो है 4 सरलेखनाएं हुई थी नैनागिरी जी में, फिर उसके बाद में एक सरलेखना हुई बर्णी जी की, जनेंद्र बर्णी की 1983 में, और फिर 1985 में वैराग सागर बदामी डाल जिनका नाम था उनकी सरलेखना हुई। अब इसमें से हम आपको पहले कौन सा उदाहरण सुनाएं, बर्णी जी का उदाहरण सुनाते। 1983 में ईसरी बाजार में 22 मई को और उनका देह उनने छोड़ी, कैसे उनका जीवन था इस पे विचार करें तो उनके लिए 30-32 साल की आयु में और उनको क्षुल्लक अवस्था में ही, और उनके फेफड़े खराब हो गए थे, उनको टीबी हो गई थी, हो गई। अब क्या करें, संलेखना ले ली 6 महीने तक अकेला सौंफ का पानी लिया। अब सौंफ का पानी लेने से वो लंग्स क्लियर हो गए। अब लोगों ने कहा कि ऐसे थोड़ी संलेखना का मतलब ये थोड़ी है कि जबरदस्ती न मर रहे हो तो मरो, लेखना का मतलब तो ये है कि अगर देह छूटती है तो ठीक है शांति से छोड़ देंगे, अगर छूटती है तो वैसे नहीं छोड़ेंगे, झटका देके नहीं छोड़ेंगे, तब आप स्वस्थ हो। इसलिए जो है अब संलेखना का विचार त्यागो। सबके कहने से उन्होंने विचार त्याग दिया, पद तो छोड़ना ही पड़ा था, फिर जीते रहे जीवन अपना। 17 साल की साधना के बाद जैनेन्द्र सिद्धांत कोश लिखा, 17 साल लगे। अभी तो कई लोगों को जैनेन्द्र सिद्धांत कोश खोल करके उसमें से शब्द के अर्थ निकालना नहीं आता। 6000 शब्दों के बारे में 150 ग्रंथों से जो एक शब्द के बारे में कहां क्या दिया हुआ है वो सब उनने इकट्ठा किया। 4 वॉल्यूम है भारतीय ज्ञानपीठ से पब्लिश हुए। उसके बाद सागर में 1980 में आचार्य महाराज के चरणों में आए। उन्होंने अपने जीवन में किसी को गुरु स्वीकार नहीं कर पाए, ज्ञानवान बहुत थी। ज्ञानवान के साथ झगड़ा जी है कि के तो श्रद्धा उत्पन्न हुई है, और अगर श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो कोई तोड़ नहीं सकता फिर। हाँ जी तो है, तो अत्यंत तर्क भी था, ज्ञान भी था, सब समझते थे। गुरु का स्वरूप उनको मालूम था, वैसा गुरु मिले मिले तो अपने को सरेंडर करें। आचार्य महाराज के चरणों में और रहे, मेरे सामने की ही बात है, और वहां पर पहली बार उन्होंने और कहा कि मैं आपको अपना गुरु स्वीकार करता हूं, अब आप मुझे आगे के लिए मार्ग दिखाएं। तो आचार्य श्री ने उनके लिए जो भी साधना थी धीरे धीरे वो बताई। सन 1980 में ही फिर मुक्तागिरी में जाकर के भी वो वहां रहे, साधना आगे बढ़ती रही। तब जाकर के 1983 में ईसरी के चतुर्मास में वो आए, और वहां उनकी विधिवत संलेखना शुरू हुई। शरीर कैसा हो गया था, हमारे इसमें तो बहुत मसाला है। हाँ अब इसमें जी सब है, उनके तो जो है जी हड्डी और उसके ऊपर जी खाल, बस उसके बीच वाला सब मामला साफ। उस जरूरत भी नहीं उसकी, बस देसी से इसी में प्राण अटके रहते हैं, सूत नहीं था। लेकिन चेहरा बिल्कुल वैसा ही अप्रमत्त, चेहरे पर पूरा तेज, और बाकी शरीर देखो तो अत्यंत जर्जर, और फिर भी जो है अपने धर्म ध्यान में लगे हुए। आचार्य महाराज से उन्होंने फिर वहां पर 62 साल की उम्र में पुनः चुल्लक दीक्षा ली, जिसे उन्हें छोड़ना पड़ा था विपत्ति आने पर। वो पुनः चुल्लक दीक्षा सिद्धांत सागर उनका नाम रखा गया। और पहले दिन जब चुल्लक दीक्षा के दिन संलेखना साथ में चल रही, तब आचार्य श्री ने कहा कि जाओ उनको प्रेम से, और समय सार जी या जो भी वो सुनना चाहे वो सुनाना। हमने जाकर के उनको और समय सार की 14 गाथाएं प्रारंभ की, जिन सेन स्वामी के अनुसार 14, अमृत सेन स्वामी के अनुसार 12 शुरू की, पहले अध्याय में जो दी हैं, तो वो सुनाई। और फिर हमने सोचा कि पूछ ले वर्णी जी से को और सुनने के नहीं, तो हमने कहा वर्णी जी और सुनाए, तो कहते गाथा तो एक ही पर्याप्त है। अरे हमने कहा भैया ये तो हाँ, जो रत्नत्रय में स्थित है वह स्व समय है, और जो पुद्गल कर्मों में स्थित है आत्मा वह पर समय है, सो मरण के समय तो अपने रत्नत्रय में ही स्थिर होकर स्व समय होकर के ही और देह छोड़नी चाहिए। जिसकी इतनी सजगता हो उसे और क्या सुनाओ। मैंने तुरंत आकर के आचार्य महाराज से कहा कि वर्णी जी तो को हमने 14 गाथाएं सुनाई, वो सुनाने का कहा, सो कहते कि गाथा तो एक ही पर्याप्त है। जीवो चरित दंशन नानक्यू तम ही जान स्वसमयम पूर्वल दे वो लाइन गाय। जीवो चरित दंशन नानक्यू तम ही ससमयम जान पूगल कम पदे सठियम चतम जान पर समय। पूगल कर्मों में जो स्थित है आत्मा वह तो पर समय है, जो अपने रत्नत्रय में स्थित है वो स्व समय है। जीवन के अंत में तो रत्नत्रय में स्थित होकर के देह में क्या स्थित होना, रत्नत्रय में स्थित होकर के इस देह को छोड़ देना, वास्तव में स्व समय की साधना करने वाले का ही जीवन सार्थक है। फिर तो जो है आचार्य श्री ने जैसे ही ऐसा सुना तो रोज एक समय निश्चित समय पर आचार्य श्री खुद आकर के अवनी जी के पास बैठ जाते, सारा संघ बैठ जाता। तब तो चर्चा चलती रहती घंटे डेढ़ डेढ़ घंटे तक जो है, और समय सार जी का आचार्य श्री के मुख से और व्याख्यान सुनते, वर्णी जी भी सुनते, अत्यंत गदगद होते, प्रसन्न हो करके संलेखना चलती रही। और आपको जो आखिरी बात कहूं, उस दिन आहार से लौट करके आए तो रोज का क्रम था कि हम सब मुनि महाराज उनको एक गोजी जैसी बना लेते कपड़े की, उसमें बिठाल करके, और ईर्ष्री में जो मंदिर था उसके नीचे एक तलघर था, उसमें ठंडक रहती थी। गर्मी मई का समय था तो उसमें ले जा करके उन्हें लिटाते थे। तो ले जा रहे थे तो उसमें सीढ़ियां थी, 12-15 सीढ़ियां नीचे उतर करके तलघर में जाना पड़ता था। सो ऊपर की सीढ़ी पर जैसे ही पहुंचे तो वन्नी जी कहते कि आचार्य महाराज आहार से आ गए क्या? सेवा करने वाले को इतने छोटे छोटे से संकेत बहुत बड़े होते हैं। फौरन इशारा हम लोगों ने समझ लिया कि इस समय बात कुछ और है। आचार्य श्री को एक मुनि महाराज फौरन लेने के लिए चले गए। यहां हम लोग धीरे धीरे सावधानी से एक एक सीढ़ी उतर रहे हैं और उधर आचार्य महाराज चल चुके। सीढ़ियां पूरी उतरने पर और फिर उन्होंने पूछा कि आचार्य महाराज आ गए क्या? आचार्य महाराज देखा तो ऊपर की सीढ़ी पर खड़े हुए थे। वर्णी जी से कहा कि वर्णी जी वो आ गए आचार्य महाराज सीढ़ियों पर। तो वर्णी जी ने अपना चेहरा उठा करके आचार्य श्री को देखा और 3 बार नमोस्तु का उच्चारण किया और गर्दन ढलक गई, प्राण निकल गए। संलेखना जो है वो इतनी जागृत और इतनी प्रसन्न भाव से हमने देखी। और फिर तो नीचे रख करके अब क्या शेष रहा? जो आत्मा में स्थित था वह तो आत्मा में स्थित हो गया, देह उससे पृथक होकर के और नीचे ही रह गई। ऐसा अगर हमारे मन में भी साहस उत्पन्न हो जावे तो कोई वजह नहीं है कि हम भी अपने मरण के समय इतने ही शांत भाव से, प्रसन्न भाव से अपने आत्मा में स्थित रह करके और पंच परमेश्वर का ध्यान करते हुए अपनी देह को छोड़ने का सौभाग्य प्राप्त करें। इसी भावना के साथ बोली आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि।
गुरुवर शाश्वत सुख दर्शक यह नग्न स्वरूप तुम्हारा है, जग की दर्शन करने जब जग विषय में रच शिव के निष्कंटक पथ में विष्कंटक होता। Thank you. Thank you.
गुजारा हो